सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। बहुत दिनों के बाद आप सब से मिलना हो रहा है। जनवरी का मास विशेष रूप से ब्रह्मा बाबा की याद बहुत ताजी कर लेता है, और खास करके जब इस हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं तो ब्रह्मा बाबा की याद और भी ताजी हो जाती है, क्योंकि बाबा इस संदली पर बैठते थे। तीन संदलियां होती थी बाबा के दिनों में। इस तरफ की संदली मम्मा के लिए, और इस तरफ की बाबा के लिए, और बीच में बच्चे बैठते थे। तो इसीलिए ये हिस्ट्री हॉल बाबा की स्मृति दिलाता है। कई पूछते हैं कि मधुबन के चार धाम कौन से हैं? मालूम है ना, चार धाम कौन से हैं? ओम शांति भवन। ओम शांति भवन तो बाबा के समय था ही नहीं। हाँ, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, ये हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। शांति स्तंभ भी ब्रह्मा बाबा का ही यादगार है ना। तो ये तीन स्थान तो है ही जहाँ बाबा रोज बच्चों से मिलते थे। बाबा के कमरे में मिलते थे, बाबा की झोपड़ी में मिलते थे, हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, और जो अभी शांति स्तंभ है वो बाबा का खेल का मैदान था, जहाँ बाबा क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। ये ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत बाद में बना, यानी बाबा के समय ही बना, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था जब बाबा व्यक्त हुए। तो ये पूरा एक खाली मैदान था, पूरा इस तरफ का ये कुछ भी नहीं था। तो यहाँ बाबा खेलते थे। तो हम कहते हैं, अभी तो कहेंगे शांति स्तंभ है, तो ये जो चार धाम है बाबा के, ये बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की याद दिलाता है। पता है क्यों चार धाम कहते हैं? तो बाबा का कमरा किसकी याद दिलाता है, कौन से संबंध की? बाबा की झोपड़ी किस संबंध की याद दिलाती है? क्लासरूम किस संबंध की याद दिलाता? और शांति स्तंभ किस संबंध की याद दिलाता? बाबा को हम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अभी तो कंबाइंड रूप में ही हम अनुभव करते हैं। तो माता पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, सखा है, सब संबंध है ना बाबा के साथ। तो बाबा का कमरा क्या याद दिलाता है? कई पूछते हैं कि एक एक कमरे में हम अलग अलग अनुभव कैसे करें एक एक स्थान पर। तो बाबा के कमरे में हम बाबा को किस रूप में देखें, झोपड़ी में किस रूप में देखें, यहाँ हिस्ट्री हॉल में योग करते हैं क्योंकि यहाँ के भी वाइब्रेशंस बड़े पावरफुल हैं, तो यहाँ हम क्या अनुभव करें, शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करें? तो कई विचार सागर मंथन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम अनुभव करते हैं कि बाबा के कमरे में जब बच्चे जाते थे ना, मैंने भी अपना अनुभव किया है, तो बाबा तो बच्चों से गद्दी पर मिलते थे, जो गद्दी बनी हुई है ना, वहाँ बाबा बैठते थे और बच्चे चारों ओर बैठते थे। पलंग तो जो है वो तो है ही, और गद्दी पर बाबा बैठते थे और नीचे बच्चों से मिलते थे और बाबा बच्चों को गोद में लेते थे। बाबा गद्दी पर बैठते थे, कई बच्चे तो बाबा के पास गद्दी पर ही बैठते थे। दादियां जो होती थी वो तो गद्दी पर ही बैठती थी। जैसे अभी भी देखो, जब व्यक्त बाप दादा से दादी जी दादी जानकी मिलते हैं तो बाबा क्या करते हैं, सरक जाते हैं और दादी जी को स्थान देते हैं, दादी जानकी जी को स्थान देते हैं, तो दोनों बाबा के साथ गद्दी पर बैठ जाते हैं। अभी भी अनुभव करते हैं। तो उस समय भी जो बाबा के अनन्य बच्चे थे वो तो बाबा के साथ साथ बैठते थे और ग्रुप भी बाबा के साथ बैठता था सामने। तो बाबा एक एक को दृष्टि देते थे, एक एक को वरदान देते थे, एक एक को गोद में लेते थे। तो बाबा की गोद में जाना, बाबा का प्यार पाना, तो हम कह सकते हैं कि बाबा से माता पिता का अनुभव करते थे। जैसे माता पिता से बच्चों को कितना प्यार मिलता है, तो उस रूप से बाबा माता पिता बन करके बच्चों को प्यार देते थे। तो बाबा का कमरा है माता पिता के संबंध का अनुभव करने के लिए। फिर बाबा की झोपड़ी में जाते हैं, तो झोपड़ी बाबा की उन दिनों में तो बहुत सिंपल थी। मैं बाबा के साथ झोपड़ी में भी मिली हूँ। तो ये खजूर के पत्ते है ना, खजूर के पेड़ के पत्ते, तो गर्मी के दिनों में बाबा खास करके ताजे खजूर के पेड़ के पत्तों की झोपड़ी बनवाते थे, खास गर्मियों में, क्योंकि वो जो पत्ते होते हैं उसकी झोपड़ी बनती है तो अंदर ठंडक होती है, तो इसीलिए ताकि ठंडक में दिन के समय बैठ सके तो बाबा वो खास बनवाते थे और 10-11 बजे बाबा वहां आकर के बैठते थे और बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे, कई बातें। तो उसमें अधिकतर बाबा पर्सनल मिलते थे, बाबा के कमरे में तो ग्रुप में मिलते थे, लेकिन बाबा की झोपड़ी थी जैसे बाबा की सिटिंग रूम, जो दिन में बाबा वहां करके बैठते थे। तो वो जैसे बाबा को, बाबा से इंडिविजुअल किसी को मिलना होता था, कोई अपनी बात बाबा को कहनी होती थी पर्सनल, तो वो बाबा को उस समय बाबा से टाइम लेते थे और बाबा उस समय मिलते थे। तो वहां हम कौन सा अनुभव करेंगे बाबा को पर्सनल मिलन का, तो उसको क्या कहेंगे, सखा के रूप में। तो बाबा को हम सखा के रूप में देख सकते हैं, बाबा की झोपड़ी में अंदर ही अंदर दिल की बातें बाबा से करो। बाबा के कमरे में माता पिता तो बहुत ऊंचे होते हैं ना, और हम उनके बच्चे जैसे बाबा की गोद में मैं चला गया, ऐसे अनुभव करो। गोद में बच्चा जब होता है तो बिल्कुल दुनिया की कोई खबर नहीं, कोई सुध-बुध नहीं, कैसी स्थिति होती है बच्चे की जो जब माँ की गोद में होता है ना, और माँ का प्यार मिलता रहता है, माँ से भोजन मिलता रहता है, तो कितनी शक्ति का भी अनुभव करता है। और बाबा की झोपड़ी है जैसे बाबा से सखा बन करके बाबा को अपने दिल की बातें सुनाना, तो वहाँ सखा का अनुभव। फिर जब क्लासरूम में आते हैं तो बाबा बिल्कुल अथॉरिटी बन करके आते थे। यहाँ बाबा आकर के बैठते थे, ऊंचे तो थे ही बाबा, तो बिल्कुल पांव पर पांव रख करके बाबा यहाँ बैठते थे, बिल्कुल सीधा। कभी बाबा को पीठ का सहारा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उस उम्र तक भी, 92 की उम्र तक भी बाबा ने कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, नहीं तो 92 वर्ष की उम्र में तो कैसे चलते हैं, लेकिन बाबा ने कभी लकड़ी नहीं उठाई, कभी चश्मा नहीं लगाया। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा ना, तो देखो बाबा ने अंत तक चश्मा नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, और अगर हो सकता है आगे की नजर कमजोर हो भी जाती है तो बाबा के अक्षर जो बाबा लिखते थे तो बड़े बड़े अक्षरों से लिखते थे, बड़े बड़े अक्षर, जैसे चश्मे की तो जरूरत पड़ी नहीं होगी। तो इसीलिए, परंतु बाबा वाणी चलाते थे। तो मुझे याद है जब मैं मधुबन में आई थी 1963-64, पहले तो 60 में आई थी, उस समय तो शायद ये हॉल भी नहीं था, तो वो जो है ना जहाँ ये ईशु दादी की ऑफिस है, दादी का जो मीटिंग रूम है, पुराना मकान, वो क्लासरूम था। वही क्लासरूम था। और गर्मियों में बाबा टेंट लगवाते थे तो टेंट में क्लास होती थी, और सर्दियों में तो अंदर होती थी तो वही था। तो 1960 में मैं जब आई हूँ तो मुझे याद है वहीं पर क्लास हुआ करती थी। अभी तो डिस्पेंसरी को बढ़ा दिया है, ऑफिस को बढ़ा दिया है, तो वो जो पैसेज है वो छोटी हो गई है। लेकिन उस समय ऑफिस बाबा की बहुत छोटी थी, डिस्पेंसरी भी बहुत छोटी थी के, तो इसलिए ये पैसेज काफी बड़ी थी तो वहाँ क्लास होती थी। लेकिन 1960 के बाद ये हिस्ट्री हॉल बना है। तो फिर जब मैं आई तब यहाँ हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे, तो मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं छोटी तो थी तो हमारी टीचर ने हमको एक पोइट्री सिखाई थी, कविता सिखाई थी इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी तो कॉन्वेंट स्कूल में तो इंग्लिश में होशियार तो थी, तो वो मुझे किसी ने बना के दी थी और थोड़ा हमने भी बनाया था। तो मुझे टीचर ने कहा कि तुम बाबा के सामने ना गा के बताना, एक्शन सॉन्ग था, तो वो मार्च का सॉन्ग था। तो मुझे याद है मैं यहाँ पर ऐसे बीच, यहाँ बहने होती यहाँ भाई, तो बीच में मैंने एक्शन सॉन्ग किया था। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा था, कहा बच्ची तुम तो बहुत होशियार हो इंग्लिश में। फिर बाबा ने कहा कि और होशियार हो जाओ और उसको अच्छी बातें सिखाओ। तो एक भाई था हमारे ग्रुप में, उसने मुझे इंग्लिश में भाषण करना सिखाया, लिखना, लिख करके दिया, तो वो मैंने रख लिया। तो बाबा ने मुझे कहा कि जब बाबा आए ना पहले तुम योग कराना। मैं 13-14 साल की, तो बाबा ने मुझे कहा कि आप यहाँ योग कराना बाबा के आने से पहले। तो कोई योग कराता था तो, और फिर बाबा के सामने तुम भाषण करना। तो बिल्कुल बेधड़क होकर के मैं योग भी कराया और बाबा के सामने, बाबा यहाँ बैठे हैं, मैं बीच की गद्दी पर बाबा के आगे ही भाषण किया सभा में। तो बाबा बड़े खुश हुए, बाबा ने उसी समय मुझे वरदान दिया, बच्ची तुम इंग्लिश में तो बहुत होशियार हो और तुम और होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। ये उस समय बाबा का साकार में मुझे वरदान मिला था। तो हम तो यही समझते हैं कि साकार के वरदान ने बहुत काम किया और मधुबन में बाबा ने मुझे रखा विदेशियों की सेवा करने के लिए। क्या करते हैं, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे मधुबन में आते हैं किस लिए, रिफ्रेश होने के लिए। तो सचमुच बाबा बच्चों को इतना रिफ्रेश कर देते थे क्योंकि बाबा के सिवाय और क्या था, मधुबन माना बाबा। तो बाबा हर ग्रुप से, हर बच्चे से इंडिविजुअली मिलते थे, क्लास में तो मिलते ही थे लेकिन क्लास में बाबा अपने हाथ से टोली भी खिलाते थे। हम सोचो अपने हाथ से रोज बाबा टोली खिलाते थे। थोड़े बच्चे होते थे तो बाबा सभा में जाकर के बाबा झुकते थे एक एक को टोली देने। आपने देखा ना निर्वैर बाई का फोटो एक, वो बाबा के आगे ऐसे हाथ कर रहा है और बाबा खड़े होकर के उसको टोली दे रहे हैं, देखा है ना वो। तो ऐसे नहीं कि बच्चे आते थे बाबा के पास, लेकिन बाबा जाते थे सब सभा में टोली बांटने के लिए, इतने निरंकारी थे बाबा। तो इसीलिए बाबा ही सबको रिफ्रेश करते थे। मानो क्लासरूम में एक बार मिलते थे, पहले अमृत वेले सबको योग कराते थे, वही टीचर थे ना यहाँ। बाकी तो बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे, बाबा कहते थे मधुबन में बहने नहीं रहे, मधुबन में जो बहने हैं वो सब सेंटरों पर रहे। इसीलिए बाबा यहाँ रखते नहीं थे, बाबा कहते थे बाबा ही बस इनफ है बच्चों को बहलाने के लिए, और सेंटरों पर बहनों की जरूरत है। तो यहाँ पर तो किने चुने 15-20 लोग रहते थे मधुबन के अंदर, बाबा के दिनों में कोई ज्यादा नहीं रहते थे, 15-20 क्या होता है। कुछ भी नहीं, तो उतने थोड़े रहते थे। तो एक हंसी की बात सुनाती हूँ, तो बाबा के पास जो कुछ बुजुर्ग माताएं थी जो किसी सेंटर पर जा नहीं सकती थी, तो एक थी वो बहरी थी माता और एक थी वो मनसुरदास थी, नेत्र मतलब दिखाई नहीं देता था उन्हें। तो ये दो बुजुर्ग माताएं वो बाबा के घर मधुबन में रहती थी, वो यज्ञ की थी तो यज्ञ में ही समर्पित हुई थी, तो बुजुर्ग तो थी ही, तो बाबा उनको कहाँ भेजेंगे। बाकी तो सब दादियों को बाबा ने सब सेवा केंद्रों पर भेजा था। तो एक बार किसी बहन ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमने सेंटर खोला है लेकिन हैंड्स की जरूरत है। तो जो दो बुजुर्ग बाबा के पास रहती थी, एक का नाम था पपुड़, बाबा उनको पपुड़ कहते थे, और दूसरा का नाम था पता नहीं क्या। तो बाबा ने कहा ये दो हैंड्स है, भेजू आपके पास? हमारे पास अभी तो कहाँ जाएंगी बेचारी, न देख पाती न वो सुन पाती। तो इसीलिए तो बाबा कहते थे अगर बहने कोई यहाँ नहीं सेवा पर नहीं जाना चाहती है और मधुबन में रहना चाहती है तो बाबा उनको टाइटल देते थे। पता है क्या टाइटल देते थे? पच्छड़ माल। पच्छड़ माल समझते हैं? वो जैसे सब्जी तरकारी खरीदने जाते हैं ना, तो सारा दिन तो फ्रेश फ्रेश तरकारी सब खरीद के ले जाते हैं, तो शाम को बाकी क्या बचता है? जो शाम को जो सब्जी बच जाती है वो सड़ी हुई सब्जी या कोई खराब सब्जी, फल भी जो बच जाएगा, बाकी सब बिक गया, तो बाकी जो बचेगा जो कोई नहीं खरीदेगा वो तो बच जाएगा ना शाम तक। तो पच्छड़ माल होता है ना, पिछाड़ी का माल, जो कोई काम का नहीं है। तो बाबा कहता था इसलिए बहने सेंटरों पर गई। तो कोई भी बहन जो बाबा के साथ रही 14 साल वो कहाँ जाएगी सेंटर पर? वो कह नहीं, हम तो बाबा के साथ ही रहेंगे, हमको तो कहीं नहीं जाना है। पर बाबा ने एक एक को भेजा सेवा पर, एक को भी छोड़ा नहीं। सिर्फ वो दो माताएं जो यहाँ थी, क्योंकि वो तो जा नहीं सकती थी, कोई सेवा नहीं कर सकती थी, तो जब किसी ने बाबा से कहा बाबा हैंड्स दो, तो बाबा ने कहा कि इन दो को भेजो, बस यही दो बची है। तो बाबा ही सब कुछ थे यहाँ, जो भी रिफ्रेशमेंट लेनी थी वो बाबा से लेते थे। मानो जैसे कोई पार्टी आई, तो जब पार्टी आई तो सबसे पहले नहा धो करके वो पार्टी बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा उनसे मिलते थे, बाबा दृष्टि देते थे, एक एक से पूछते थे। और कई बार बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि बच्चे जो नए नए बच्चे थे उनसे बाबा पूछते थे, बच्चे पहले भी कभी मिले हो? तो अगर वो बच्चा कहता था नहीं बाबा मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, तो बाबा कहेगा फेल, टीचर को फेल कर देगा, क्योंकि टीचर ने सिखाया नहीं है। तो इसलिए टीचर्स बड़ी होशियार हो गई थी, तो वो पहले से ट्रेन में सिखा देती थी सब स्टूडेंट्स को कि बाबा आपसे पूछेगा कि बच्चे पहले कभी मिले हो तो जरूर, तो एकदम फड़क से कहना हाँ बाबा क्लब पहले भी मिले थे, भले पहली बार है लेकिन क्लब तो मिले ही है ना, इस क्लब में भले पहली बार है। तो टीचर होशियार हो गई थी, तो पहली बार मिलना माना वो तैयार होकर के पहले बाबा से मिलते थे, फिर बाद में बाकी सब चीजें, फिर नाश्ता करना या भोजन करना या जो कुछ, तो ये पहली मुलाकात होती थी। फिर रोज की दिनचर्या में अमृत वेले बाबा दृष्टि देते थे, योग कराते थे, फिर मुरली में बाबा टोली देते थे मुरली के बाद। फिर क्या होता था, जैसे बाबा गए ना हॉल से, तो बाबा जैसे ही कमरे में जाते थे तो बच्चे पीछे पीछे, जैसे पीछे पीछे, फिर बाबा जैसे कमरे में बैठे तो चेम्बर लग जाता था, चेम्बर समझते हैं, थोड़े बहुत बैठ जाते थे बाबा के संग संग। तो बाबा जो सवेरे मुरली चलाई उसका फिर बाबा रिवाइज कराते थे कि बाबा ने आज ये विचार सागर मंथन किया, गरम गरम हलवा पकाया, बाबा ने ये मुरली में कहा, तो फिर और एडिशन हो जाती थी, तो वो तीसरी मुलाकात होती थी। फिर कई बार बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे, ये हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन खाते थे, मुझे याद है बाहर पे एक फोटो भी लगा है कि यहाँ बाबा बैठते थे, बाबा की बैठक यहाँ होती थी और ऐसे रेक्टेंगुलर में, ऐसे चौरस में बच्चे बैठते थे ब्रह्मा भोजन खाने के लिए, और नीचे ही परोसते थे, बाबा भी नीचे ही बैठते थे, टेबल कुर्सी पर नहीं, नीचे ही बैठते थे। और ब्रह्मा भोजन तो विशेष होता था, बाबा खास बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे, लेकिन ब्रह्मा भोजन ऐसे ही नहीं बस परोस लिया और खाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, पहले बाबा के आगे रखते थे कटोरियों में सब्जी क्या जो कुछ, तो पहले सब बैठ जाते थे मानो, और बाबा के आगे कुछ रखते थे, तो बाबा एक एक को अपने पास बुलाते थे, एक एक को दृष्टि देते थे, एक एक के मुख में गिट्टी डालते थे, गोद में लेना, गिट्टी डालना, दृष्टि देना, वरदान देना, फिर वो जाकर के अपनी सीट पर बैठता था, और जब सब का पूरा हो जाए तब भोजन चालू होता था, ऐसे ही नहीं बस खाओ अच्छा सब प्यार प्रेम से भोजन खाओ, तो बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन माना। आज बाबा की गोद मिलेगी, बाबा के बाबा मुख में गिट्टी डालेंगे, बाबा वरदान देंगे विशेष रूप से, ये ब्रह्मा भोजन होता था। तब कहते थे ब्रह्मा भोजन बाबा के साथ। अभी तो बहुत हो गए है ना, तो कहाँ तक दादी एक एक को बुलाए। फिर भी कई बार होता है तो एक एक को बुलाते, जो भोजन सर्व करते हैं खिलाते हैं उनको कुछ न कुछ देते हैं जरूर हाथ में। ये ब्रह्मा भोजन होता था। फिर बाबा एक एक के साथ झूले पर झूलते थे, तो झूले पर झूलना बाबा के साथ वो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता था। बाबा के साथ झूले पर झूल रहे हैं बाबा, कई बार मुरलियों में भी सुनाते ना, ज्ञान का झूला, प्रेम का झूला, खुशी का झूला, तो सचमुच झूले पर झूलते थे। और झूला कहाँ होता था, वो झोपड़ी के पास नहीं, ये जो है ना वरांडा जहाँ ये साउंड सेक्शन है, ये साउंड सेक्शन के पास वहाँ झूला होता था। और जो अभी ऑफिस है सब रतन मोहिनी दादी की ऑफिस या जो कुछ ये सब खुला था, यहाँ सब्जियाँ कटती थी, क्योंकि किचन जो था वो यही था, वो बड़ा किचन नहीं था, नीचे वाला जहाँ बिस्तरे रहते हैं ना हमारे चंद्रपाल भाई रखते हैं बिस्तरे, वो बिस्तरे का जो वो स्थान था वो किचन था, बड़े बड़े वो क्या, और आग जलाते थे, धुआं निकलता था, लकड़ी डालते थे, उस जमाने की बात है। तो वो किचन होता था। और जो अभी ये जहाँ शशि बहन की ऑफिस है और ये साउंड सेक्शन है इस तरफ, ये साउंड सेक्शन का जो कमरा है वो दादी जी का कमरा था, दादी जी वहाँ रहते थे जब भी आते थे। और वो जहाँ अभी ऑफिस है शशि बहन की वो डाइनिंग रूम था, और ये पूरा खुला था, यहाँ सब्जियाँ कटती थी ये जो ऑफिस है। और बाबा का यहाँ झूला होता था, क्योंकि यही जगह थी, ये स्थान था, यही जगह थी, थोड़ा हवाई महल था, पुराना मकान था बस, बाकी तो ये सब बाद में बने हैं। तो झूले पर बाबा झुलाते थे। तो मुझे भी याद है एक बार जब हम भी जब मधुबन आए थे अपनी लौकिक माता जी के साथ, तो बाबा बीच में बैठे और एक तरफ में लौकिक माता जी और एक तरफ में, तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची किसके साथ झूल रही हो, तो मैंने कहा बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा अच्छा और किसके साथ झूल रही हो, तो मैंने कहा माता जी के साथ, मैं छोटी थी तो माँ के साथ। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा और किसके साथ झूल रही हो, अब और तो कोई था ही नहीं झूले पर, केवल बाबा थे और माँ थी लौकी। तो बात तो जब बाबा ने पूछा और किसके साथ झूल रहे, तो मैं तो बाबा को देखने लगी क्या जवाब दूं। तो फिर बाबा ने कहा बस और भी कोई है, तो मैंने कहा नहीं मैं तो क्योंकि और तो कोई दिखाई नहीं देता। तो बाबा ने मुझे उसी समय कहा कि बच्ची जब बाबा के साथ झूलती हो ना, तो उस समय ये नशा रखना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी तीन हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हूँ। कौन तीन सबसे बड़ी हस्तियाँ, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो सबसे नंबर वन कौन, परम पिता, जो सर्व, बाबा ने तो स्पष्ट किया जो सर्व आत्माओं के परम पिता है उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। फिर जो सब मनुष्यों के पिता है प्रजापिता उनके साथ झूले में झूल रही हूँ, और तीसरा कौन, हाँ तीसरा बाबा ने कहा जो नंबर वन देवता है उसकी आत्मा के साथ झूले में झूल रही हूँ। थ्री इन वन है ना, शिव बाबा भी उनके तन में, ब्रह्मा बाबा तो है ही प्रजापिता, और वो ही श्री कृष्ण बनते हैं, तो थ्री इन वन हो गए। तो बाबा ने कहा जब बाबा के साथ झूले में झूलो तो ये नशा रखना। तो सचमुच इतना नशा चढ़ गया, वाह मैं तो दुनिया की सबसे बड़े तीन हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हूँ। अभी भी कई बार वो मुझे दृश्य याद होता है, जब हम जाते हैं ना तीर्थ पार कभी झूले में झूलते हैं तो याद आता है बाबा के साथ हम झूले में झूल रहे हैं, तो खुशी का झूला, प्रेम का झूला, आनंद का झूला, उस झूले में झूले। कहीं भी जाते हैं, कई सेंटरों पर जाते हैं, कईयों के घरों में जाते हैं, और जिस समय झूले पर बैठते हैं ना वहाँ झूले तो होते हैं कईयों के, तो ये मुझे दृश्य बाबा का याद आता है। अच्छा फिर दूसरा, बाबा के साथ बैडमिंटन सभी खेलते थे, चाहे छोटा बच्चा हो तो भी खेलता था, बाबा सबको कहेगा अच्छा बच्चे आओ। और बाबा तो इतने लंबे इतने ऊंचे, बाबा तो 6 फीट से भी लंबे थे, तो और इतना बाबा तेज चलाते थे, बाबा की जो हाथ था ना बड़ा स्ट्रॉन्ग, रैकेट भी इतना जोर से माना वो जो फेंकते थे बहुत पावरफुल, तो बाबा को से तो कोई नहीं जीत सकता था, इतने पावरफुल थे बाबा। क्रिकेट भी खेलते थे बाबा, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो बाबा कहते थे कि देखो यहाँ इसमें डबल इंजन है, ये डबल शक्ति है ना, किसकी शक्ति है, शिव बाबा की शक्ति और ब्रह्मा बाबा की तो शक्ति है ही है। लेकिन जब बाबा खेलते थे ना तो उस समय ऐसा लगता था जैसे कि हमारी तरह ही है, अभी जैसे कोई और खेल रहे हैं तो हम भी जैसे उनके साथ और बाबा हमारे साथ खेल रहे हैं। लेकिन खेलते खेलते अचानक बाबा खड़े हो जाते थे, अचानक अरे एकदम खड़े होकर के दृष्टि देने लगते एकदम, तो पता चल जाता था अभी शिव बाबा की प्रवेशता हुई है। एकदम ये ललाट बाबा का चमकने लगता था, बिल्कुल अनुभव होता था, बिल्कुल आंखें चमकती थी बाबा की, तो लगता था ये ब्रह्मा बाबा की दृष्टि नहीं है, ये किसकी दृष्टि है, ये शिव बाबा की दृष्टि है। अभी भी जैसे हम अनुभव करते ना गुलजार दादी में बाप दादा आते, वैसे गुलजार दादी को आप देखो तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, दादी मिलते हैं जुलते हैं हम जाते हैं, और जब बाप दादा आते हैं तब अनुभव होता है ना एकदम चेहरा ही बदल जाता है। परंतु अगर हमारी दृष्टि और हमारी स्थिति साधारण होगी तो हमको साधारण ही लगेगा, लेकिन हमारी स्थिति ऊंची होगी तो अनुभव होगा, वो जैसे ललाट पर चमक कर आंखों में तेज अनुभव होता है। तो ये बाप दादा से भी अनुभव साकार में भी होता था, इसीलिए बाबा के साथ खेलना ये भी एक चरित्र बन जाता था। तो भोजन खाना, खेलना, मिलना, गोद में बैठना, क्लास करना, मुरली सुनना, योग करना, और फिर बाबा रोज तो मिलते ही थे, फिर जब जाने के दिन होते थे तो बाबा विशेष बुलाते भी थे, सौगात भी बाबा ही देते थे। मुझे याद है बाबा ने बाबा की एक ब्रह्मा बाबा की सौगात मेरे पास अभी तक है, मेरे लौकिक घर में छोटी सी शॉल बाबा ने हमको दी थी, वो शॉल अभी तक रखी है, उसको यूज कौन करेगा, बाबा की यादगार है ना, अभी तक रखी है। और मम्मा अलग सौगात देती थी, बाबा अलग सौगात देते थे। बाबा ने मम्मा ने मुझे छोटी सी पर्स दी थी, वो मोतियों की पर्स होती है ना, वो भी अभी तक मेरे पास है, मैं वो यादगार सबको दिखाते, ये मम्मा ने मुझे दिया था, ये बाबा ने मुझे दिया था। तो दोनों सौगात भी देते थे, और फिर लास्ट में बाबा गोसून कमसून की टोली भी देते थे बाबा की। ये गोसून कमसून की जो टोली है ना, ये इसका भी बड़ा सुंदर राज है। ये गोसून कमसून का अर्थ क्या है पता है आपको है? हाँ वो तो ठीक है, जल्दी जाओ तो जल्दी जाओ थोड़ी कहेंगे, पर इसका अर्थ है ये जल्दी आओ किसको कहते थे बाबा मालूम है? नहीं मालूम। तो बाबा के साथ जैसे अभी दादी जी के साथ मोहिनी बहन होते हैं ना, तो मोहिनी बहन संदेशी है, तो उसी समय उसी प्रकार बाबा के साथ जो बाबा की संदेशी थी वो संतरी दादी थी। संतरी दादी का फोटो कहीं भी नहीं है, वह विश्व किशोर भाव है ना, ये विश्व किशोर है जो बाबा के पास खड़े हैं, ये बाबा के बिल्कुल राइट हैंड थे, बाबा के लौकिक भाई का बेटा है, बेटा था। तो उनकी युगल संतरी दादी वो बहुत ही पावरफुल ट्रांस मैसेंजर थी, इतनी पावरफुल थी जो बाबा उनको कहे तुरंत जाती थी। तो बाबा कहीं समझो बाबा को कोई बात पूछनी है अव्यक्त बाप दादा से, तो बाबा उनको कहते थे जाओ बच्ची बाबा से ये बात पूछ कर आओ, तो वो सामने बैठती थी बाबा के बिल्कुल, और 5 सेकंड भी नहीं बस दृष्टि बाबा से ली और उड़ जाती थी, वो आंखें बंद एकदम चली गई वतन में। तो बाबा उसको कहते थे पहले गोसून है ना जल्दी जाओ, कहाँ जाओ वतन में, और जल्दी आओ गोसून कमसून तो जल्दी वतन में जाओ और जल्दी वतन से आओ, तो ये कोई संदेश बाबा को पूछना है अव्यक्त बाप दादा से। तो वो बस बाबा से दृष्टि ली और 5 सेकंड में उड़ी और 1 मिनट में वापस भी आ गई संदेश लेकर के। तो उसका दादी का नाम ही रखते थे गोसून कमसून दादी तो क्योंकि फटाफट जाती है, तो देखो अभी और संदेशियां जाती है, कम से कम एक गीत तो बचता है ना जाने के लिए, फिर दूसरा गीत, तीसरा गीत, तब जाकर के वो वापस आती है, 15 मिनट तो कम से कम लगते हैं। लेकिन ये तो 1 मिनट में गई, संदेश बाबा का दिया और संदेश लेकर के आ गई, संदेश वाहक बनती थी। तो ये संतरी दादी की विशेषता थी। और जब बाबा अव्यक्त हुए है ना, तो तो संतरी दादी ही उस समय वतन में गई थी। और जो बाबा से पूछा था कि बाबा आप चले कैसे गए, बाबा क्या क्या हुआ, मतलब जो कुछ था वो संदेश संतरी दादी के द्वारा या गुलजार दादी तो मधुबन में रहती नहीं थी, गुलजार दादी तो दिल्ली में रहती थी, वो भी दो दिन के बाद पहुंची है, दिल्ली से यहाँ पहुंची है, पर संतरी दादी ही मेन थी जिसको दादी जी ने कहा कि जाओ जाके पूछो कि बाबा कैसे गए, अभी क्या होगा आदि। तो संतरी दादी सारे संदेश लाती थी अव्यक्त वतन के। तो मैं बता रही थी अपना अनुभव कि कैसे बाबा ने हमारे ग्रुप की इतनी पालना की, तो मैं अपने इंडिविजुअली अनुभव सुना सकती। इसी प्रकार हर ग्रुप का बाबा बहुत रिफ्रेश कर देते थे ज्ञान की पॉइंट सुना करके, और लास्ट में बाबा छुट्टी देते थे तो कैसे छुट्टी देते थे, ऐसे नहीं कि अच्छा बस गो सुन कम सुन टोली दी मना पूरा हुआ, बाबा साथ में चलते थे। गाड़ियां तो उस समय यहाँ थी नहीं, मोटर गाड़ी कुछ भी नहीं, बसे वसे यहाँ तक तो आती नहीं थी, वो बस स्टैंड तक, तो वहां तक पैदल जाते थे। और बाबा के पास दो बैल थे, तो वो बैल गाड़ी होती थी, तो बैल गाड़ी में सामान रखते थे और पीछे के दरवाजे से वो बैल गाड़ी जाती थी और बच्चे पैदल जाते थे बस स्टैंड तक, और बस में चढ़ाते थे, बैल गाड़ी वापस आती थी, और बाबा साथ में चलते थे कहाँ तक, वो पीछे का जो पेड़ है वहाँ तक बाबा साथ चलते थे, और हम जाते जाते वो बाबा हाथ हिलाते थे, रुमाल हिलाते थे, सफेद रुमाल बाबा का, और हम भी पीछे मुड़ के देखते रहते थे, आगे जाते रहते थे क्योंकि बाबा हाथ हिला रहे, तो पैदल होता था। तो मुझे अपना अनुभव याद है कि यहाँ हम 8 दिन रहे थे, तो जब 8 दिन रहे तो बाबा का इतना प्यार मिला जो बात मत पूछो। अब जब जाने का समय आ गया और सब छुट्टी ले रहे हैं, मैं जाके छिप गई थी, मैं आई नहीं मिलने के लिए, तो मेरी लौकिक माता जी मुझे ढूंढे, मैं 12-13 साल की होगी, तो वो मुझे ढूंढे, तो बहुत ढूंढे पर मैं मिली नहीं। आखिर तो ढूंढ ढूंढ करके तो निकाला क्योंकि आखिर मैं जाऊंगी कहाँ, तो बाबा के पास लाए, तो मैं तो बाबा की गोद में आके रोने लगी। माता जी मुझे सुनाती थी, मुझे तो इतना याद नहीं है पर वो सुना रही थी कि तुम तो इतना रोई, तो तुम कहती थी कि मैं तो नहीं जाऊंगी वापस, मुंबई की रहने वाली, तो मैं वापस बॉम्बे नहीं जाऊंगी, वहाँ माया है, वहाँ माया है, बस यही मेरे मुख से निकलता था, मैं बॉम्बे में नहीं जाऊंगी, मैं मधुबन में रहूंगी। तो अभी ऐसा वातावरण हो गया, मैं रो रही हूँ और ग्रुप जा रहा है, तैयारी हो गई है, सब निकल रहे और मैं जाने के लिए मना कर रही हूँ। तो बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति रची, तो बाबा ने मेरी लौकिक माता जी को कहा, अच्छा बच्ची इनको आप लोग सब जाओ, ये शीलू मेरे पास रहेगी, सबको ये कह दिया, ये यहाँ रहेगी, बाबा के पास रहेगी और सेवा करेगी, आप लोग सब जाओ। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई बाबा मुझे ऐसे छुट्टी दे रहे हैं यहाँ रहने की, और मेरी माता जी मुझे देख रही है, यहाँ रहेगी ऐसी छोटी है, ये क्या करेगी यहाँ, इसको तो पढ़ाई करनी है। तो वो तो डर गई मेरी माता जी, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते थे और बड़ा बंधन भी था माँ को, ऐसे फ्रेश तो नहीं था, फिर भी कैसे माँ मुझे लेकर के आई थी। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन फिर उसके थोड़ी देर के बाद अभी सब तैयारी कर ही रहे थे जाने की, और मैंने सोचा मैं निश्चिंत हो गई कि अभी मैं जाऊंगी नहीं, तो फिर बाबा ने मुझे बुलाया, कहा बच्ची देखो बाबा है ना तुमसे बहुत सेवा कराएंगे, देखो कैसे बाबा प्यार से मुझे कह रहे हैं, बाबा को तुमसे बहुत सेवा करानी है, क्योंकि बाबा ने तो मुझे कहा था तुमको विदेश भेजूंगा, तो बाबा ने कहा कि देखो तुम इंग्लिश में इतनी होशियार तो हो ही, तो तुम और होशियार हो जाओ, उसके तो तुमको पढ़ना पड़ेगा ना, तुम और पढ़ो होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको मधुबन में बुला लेगा, बाबा तुम्हें गारंटी करते हैं बाबा तुमको मधुबन में बुलाएगा, इसलिए बच्ची अभी तुम जाओ और होशियार हो जाओ, पढ़ाई अच्छी करो और बाबा का नाम बाला करो तो बाबा तुमको बुला लेगा। अब मैं क्या करूँ, तो देखो पहले बाबा ने मेरी रखी, मेरा वो जो रोना धोना वो बंद करा, देखो इतना युक्तिवाद बाबा कैसे थे, प्यार भी उतना ही दिया, फिर बाबा ने मुझे समझाया भी और मुझे तैयार भी कर दिया। मैंने कहा अच्छा बाबा आप मुझे रखेंगे, तो कहा हाँ, तो देखो बाबा ने जो वरदान दिए वो सब पूरे हो गए ना, तो बाबा ने यहाँ रखा भी। लेकिन एक मुझे अनुभव, जो पहला अनुभव मुझे बाबा से मिला था, मैं तो उस समय मैं समझती हूँ 9-10 साल की होगी, जो पहली बार मैं बाबा से मिली हूँ, बाबा बॉम्बे में आए थे, तो मेरी लौकिक माता जी मुझे ले गई, तो मुझे क्या लगा कि बस कोई माता जी का गुरु है और मैं माँ के साथ जा रही हूँ माता जी के गुरु के पास। तो उस समय बाबा है ना बच्चों से मिल रहे थे, तो बाबा ने जैसे बाबा गोद में ले रहे थे, तो बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ बच्चे, तो बाबा ऐसे लेते थे आओ बच्चे, जैसे दादी जानकी ने कहा आओ 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 जल्दी आओ आओ, तो बाबा कहते आओ बच्चे, तो हर बात में बच्चे शब्द जरूर होता था, ऐसे नहीं खाली आओ आओ बच्चे आओ बच्चे। तो जैसे बाबा ने मुझे कहा आओ बच्ची, तो एकदम से मैं दौड़ी बाबा की गोद में। तो मुझे क्या अनुभव हुआ, जैसे बाबा जैसे मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, क्योंकि मैं है ना मना 3 दिन का केवल शरीर था, जन्म लिए 3 दिन ही हुआ था, तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कभी पिता को लौकिक पिता को देखा नहीं, एक्सीडेंट उनका हो गया और मैं केवल 3 दिन की थी, तो और उसने भी कभी मुझे नहीं देखा। मतलब आप सोचो हिसाब किताब मेरा इतना ही था कि जन्म देना था उसका, क्योंकि माता जी मतलब हॉस्पिटल में तो थी हम पैदा हुए, तो वो देखने भी नहीं आए थे हॉस्पिटल में, लज्जा होती है ना उस समय, तो पहले जमाने में बड़ी लज्जा होती थी, आजकल की तरह तो नहीं है। तो और मेरे पिताजी सबसे छोटे थे, 6 भाई और उसमें सबसे छोटा भाई वो था, तो बाकी तो सब बड़े बड़े थे, इसीलिए उनको लज्जा आई होगी, तो कहा कि अच्छा फिर तो घर जाना ही है, तो हॉस्पिटल में भी नहीं आए थे। और 3 दिन की केवल थी, तो वो मोटरसाइकिल पर थे और ट्रक के सामने जैसे भिड़ंत हो गई और उसी समय ही उनकी डेथ हो गई। तो पिताजी को तो कभी देखा नहीं, फोटो भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से मेरे माता पिता आए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद आए थे, मतलब उस समय तो सब कुछ तो पाकिस्तान में छोड़ के आए थे भारत में जब आए, तो फोटो भी नहीं था, तो उनकी शक्ल कैसे हो मुझे पता नहीं लौकिक पिताजी की। तो लौकिक पिता के साथ तो कोई संबंध जैसे हुआ ही नहीं, हिसाब किताब ही पूरा हो गया। तो जब बाबा ने मुझे कहा ओ बच्ची, तो एकदम से मुझे लगा कि मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, ऐसा अनुभव हुआ, और मैं बाबा की गोद में चली गई। तो मुझे बड़ा ये नाज है, हम कई बार मनोहर दादी कहती है कि ना हर एक का जन्म अलग अलग रूप से होता है, किसी का जन्म ज्ञान से, किसी का जन्म टोली से, किसका जन्म दृष्टि से, किसका जन्म मुरली से, किसका कोई कोर्स करता है, कोई शिविर करते हैं, उस रूप से उनका अलौकिक जन्म हो जाता है, और मेरा जन्म बाबा की गोद से। तो मैं तो ऐसे अनुभव अपना सुनाती हूँ, तो इस रूप से वो अनुभव हुआ, और फिर तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर तो बाबा के हो गए। तो 1900 उस दिन मैं कल सुना रही थी अनुभव अपना कि 1967 में जब मैं इंटर साइंस में पढ़ रही थी, क्योंकि बाबा ने कल मुरली में कहा ना कि कन्याओं को तो सेवा में लग जाना चाहिए, उनको कहा उनका और तो बंधन है नहीं, तो इसीलिए हम भी पढ़ाई करते थे। तो जब मैं सेकंड ईयर कॉलेज में थी, तो उसी समय जैसे घर से बहुत जोर था कि आपको मेडिकल लेना है, मेडिसिन करना है, तो उस समय तो 1969 कौन सा 67 क्या कहेंगे 67 था, और उस समय ये बात फैल गई थी कि 1976 में विनाश होगा, 1976 में विनाश होगा। तो पहले हमने सोचा अभी 67 है और अगर मैं अभी मेडिसिन पढ़ूंगी तो 9 साल चाहिए, और उसके समय तो वो 7 साल तो कम से कम चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, फिर 2 साल उसका इंटर्नशिप होता है, तो 7 साल में तो ये तो विनाश ही हो जाएगा। तो मैं विनाश के समय डॉक्टर बन करके क्या करूंगी, बाबा की सेवा तो कुछ करूंगी नहीं, तो बहुत चिंतन चलता था। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने तो मुझे उसी समय पत्र लिख दिया, बच्ची बाबा तो चाहेंगे कि आप जैसे बच्चियां तो विश्व की सेवा करे, आप तो रूहानी डॉक्टर बनो, ये बाबा आपसे चाहेंगे। तो रूहानी डॉक्टर माना बाबा की सेवा में लगो, तो जिस्मानी डॉक्टर किसके लिए, तो इतने साल पढ़ने पड़ेंगे, तो बाबा की ये आप में उम्मीद है। और बाबा का लेटर आ गया, माना भगवान ने मुझे आदेश दे दिया है कि क्या करो। बस फिर तो हमने वो पढ़ाई, अब 7 साल तो नहीं पढ़ाई की, परंतु 2 साल उसके बाद जरूर पढ़ाई की, तो इसीलिए ग्रेजुएशन किया। तो मैं लास्ट ईयर में थी BSc बैचलर ऑफ साइंस पढ़ रही थी, और बाबा अव्यक्त हो गए जनवरी में, तो मेरा तो आखिरी साल था, 1969 में एग्जाम्स देने थे अप्रैल में, और 18 जनवरी के दिन बाबा व्यक्त हो गए 1969 को, और शनिवार की रात थी। मैं तो शाम को 8 बजे तो सेंटर से घर गई हूँ 18 जनवरी को, क्योंकि सेंटर पर हम रोज शाम को सेवा करते थे, क्लास कराते थे, लेक्चर देते थे, कोर्स कराते थे, म्यूजियम समझाते। सेंटर पर तो वे कन्याएं जाती है सेवा करती है, तो मैं तो वो करती थी, वो पूरा करके मैं घर गई हूँ। और फिर तो पता ही नहीं, और ये तो रात को 9:15 बजे बाबा व्यक्त हुए हैं, और तुरंत समाचार आया है और सब दौड़े। तो जब रविवार सुबह मैं सेंटर पर गई तो मैंने देखा रविवार के दिन तो कितने भाई बहन होते हैं क्लास में, और यहाँ तो जैसे 2-4 लोग बाबा के कमरे में बैठे, सारा सेंटर खाली। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा सब कहाँ चले गए, तो बोला सब माउंट आबू गए। मैंने कहा क्यों, तो कहा बाबा ने शरीर छोड़ा है, बाबा ने शरीर छोड़ा। तो मैं तो वहाँ खड़ी रह गई एकदम, मेरी आंखें खुल गई, मेरा मुंह खुल गया, बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो मुझे उस समय ऐसे लगा जैसे ये धरती है ना, ये फटेगी, और ये धरती फटने वाली है, और ये आकाश सारा नीचे आ जाएगा। पता नहीं ऐसे जैसे मेरे पांव कांपने लगे कि बस अभी विनाश हुआ क्यों, बाबा गए माना अभी विनाश हो जाएगा। बस फिर तो मैंने अपने आप को संभाला, फिर तो मैं भी बाबा की याद में बैठ गई। लेकिन जैसे बाबा की शक्ति उस समय मिली, और जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे अभी तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बस ये जैसे बाबा की टचिंग आ रही, पर क्या होगा ये पता नहीं। अब उसके बाद जो मेरे 3-4 महीने तो थे एग्जाम्स जब तक दे, तो वो मेरे 3-4 महीने कैसे बीते, क्योंकि अंदर में आया बाबा मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की। जो बाबा की इच्छा थी कि मैं रूहानी डॉक्टर बनूं, अभी तो बनी नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने बाबा आपकी इच्छा पूरी नहीं की, आप चले गए। लेकिन फिर जैसे मालूम पड़ा कि अव्यक्त बाप दादा का पाठ है, और बाबा ने उस समय सब दादियों को मधुबन में रख दिया, सब जो भी जहाँ भी बड़ी बहनें थी सबको मधुबन में बुला लेने, तो बाबा के समय कोई दादी मधुबन में नहीं, और बाबा अव्यक्त हुए तो बाप दादा ने सब दादियों को जहाँ भी वो जिस भी सेंटर पर थी सबको मधुबन में बुला लिया, और बाबा ने कहा अभी यहाँ भट्टियां चालू करो। तो कुमारों की भट्टी, कुमारियों की, टीचर्स की, युगलों की, मतलब ये भट्टियां शुरू हुई। तो सबसे पहले टीचर्स की भट्टी हुई 2 महीने की, फरवरी मार्च ऐसे 2 महीने की भट्टी हुई। फिर उसके बाद या मार्च फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद कन्याओं की भट्टी। तो कन्याओं की भट्टी जब हुई, ट्रेनिंग हुई, उसमें अव्यक्त बाप दादा ने सब प्रोग्राम दिया अब क्या करो, अब इसके बाद क्या करो, क्योंकि मधुबन में सबको बाबा को बुलाना था। तो वो हम लोग 30 कुमारियां थी जिनकी ट्रेनिंग हुई, सब कॉलेज से पढ़ करके आई थी, तो मैं भी उसी में आई। और उस समय बाबा यहाँ अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आते थे, कभी कभी तो संदी पर बैठते थे, और कभी ये जो है ना ये दीवार के नीचे, ये सोफा वोफा कुछ नहीं थे, ये दीवार के नीचे यहाँ गद्दी बिछाते थे, और बाप दादा गुलजार दादी यहाँ बैठती थी, और हम सब चारों तरफ ऐसे बैठते थे, और बाप दादा बच्चों से मिलते थे, इतना नजदीक है। और बाबा अक्सर करके हर दूसरे तीसरे दिन भी आते थे, बाबा के कमरे में आते थे, और सभी दादियों में शक्ति भरी, क्योंकि किसी को भी कोई ऐसा पता ही नहीं था क्या करना है, कुछ मालूम ही नहीं, बाबा ही होल सोल थे, अथॉरिटी थे। और उसके बाद कैसे बाबा कमरे में आते थे अव्यक्त बाप दादा, और घंटों घंटों दादियों से बाबा बैठ करके दादियों में शक्ति भरते थे कि अभी ये पाठ बदल रहा है, अभी शिव का पाठ गुप्त और शक्तियों का पाठ प्रत्यक्ष, ब्रह्मा बाप और शिव बाप बैकबोन, उस दिन ये अव्यक्त वाणी सुन रहे थे ना, और बच्चों को बाबा आगे कर रहे हैं, तो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से तो हम भी जब उस भट्टी में थे, तो बाबा हमारी 1 महीने की भट्टी थी, बाबा हर हफ्ते 4 बार हम लोगों से मिले, हर हफ्ते आते थे, और खूब शक्ति भरी, खूब शक्ति भरी। तो जो हम लोग 30 कुमारियां थी घरों से आई थी, ऐसे नहीं कि सबका लक्ष्य था कि सरेंडर होना है, लेकिन बाबा की इतनी शक्ति मिली जो सब की सब सेंटरों पर चली गई, तो हम भी सेंटर पर चले आए। तो ये था साकार की पालना, अव्यक्त की पालना बाबा ने हमें दी। और फिर तो 76 से बाबा ने मुझे मधुबन में रखा, तो रात रात भर बाबा आते थे, सारी रात बाबा रहते थे। तो मेरा भी ये सौभाग्य है कि बाबा के साथ साथ हम रहते थे, क्योंकि विदेशी मिलते थे बाबा से तो बाबा को हाथ में टोली देना, क्योंकि एक एक को बाबा टोली देते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे सारी सारी रात। तो बाजू में तो कोई चाहिए तो ट्रांसलेशन हम करते थे, बाबा के हाथ में टोली देते थे तो कितने वाइब्रेशन मिलते होंगे, है? सारी रात बाबा के साथ बैठते थे, तो वो भी सुख लूटा है बाबा से। तो साकार की भी पालना ली, मम्मा की भी थोड़ी पालना ली है, और अव्यक्त बाप दादा की तो पालना ले ही रही है। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि बाबा का इतना प्यार हमें मिला है। आप कहेंगे हमने तो नहीं पाया है लेकिन जरूर सुनने से भी कुछ तो अनुभव होता है ना, क्योंकि बाबा यही कहते थे कि भले मेरे सामने थोड़े बच्चे बैठे हैं लेकिन बाबा केवल इस सभा को थोड़े देख रहा है, बाबा तो उन बच्चों को भी देख रहा है जो बाद में आने वाली है। तो आप सब तो बाबा के संकल्पों में पैदा तो हो ही गए थे, भले प्रगट बाद में हुए लेकिन संकल्प से तो बाबा ने आपको रच ही डाला था, ठीक है ना। तो ऐसा बाबा का प्यार हम बच्चों को मिलता है संगम पर, जो सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिलेगा। अनुभव करते हो ना, करते हो कि नहीं, हा? यही प्यार बाबा का निस्वार्थ प्यार बच्चों के लिए है। तो बस उस प्यार में खो जाओ। आज भी बाबा का वरदान था ना, लगन मगन वर्णन और मनन, ये चार बातों में बिजी हो जाओ तो व्यर्थ संकल्प कभी नहीं आएंगे, तो कर्मातीत जल्दी बन जाएंगे, यही बनना है ना। और ये नहीं सोचो हम थोड़े होंगे तो दूसरे होंगे, ये कभी नहीं सोचो। इसलिए देखो बाबा बार बार यही कहते 108 की माला में आना है, कोई ये न सोचे तो दादियां ही आएंगी जिन्होंने बाबा की पालना ली है वही आएंगे, ये कभी नहीं सोचो। सब सीट खाली पड़ी है। एक बार दादी प्रकाशमणि जी से किसी ने कहा, दादी आप तो सेकंड नारायण बनेंगे, गारंटी है दादी आप सेकंड नारायण बनेगी। तो दादी उसको देख रही है, वो बहन थी, दादी ने कहा बाबा ने कहा है क्या? नहीं है ना, डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं है, हुआ है कि ये सेकंड लक्ष्मी सेकंड नारायण बनेंगे, केवल मम्मा बाबा का डिक्लेयर किया है, पर और किसी का डिक्लेयर हुआ है क्या? अष्टरतन कौन होंगे, 108 कौन होंगे, कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, आउट हुआ ही नहीं है, सब सीट खाली है, सब खाली है। वो मेरी गोराउंड होता है ना, मेरी गोराउंड ये सॉरी क्या म्यूजिकल चेयर्स, वो खेल होता है ना, सारी कुर्सियां खाली होती है और म्यूजिक बजता रहता है। अब म्यूजिक बंद हो तभी तो कुर्सी पर बैठे ना, जब तक म्यूजिक बंद चल रहा है तब तक तो कुर्सी खाली है। तो सेकंड लेक्चर अभी कौन बनेगा वो भी कहाँ पता किसी को, कोई भी बन सकता है। तो इसीलिए ये ऐसा वंडरफुल स्कूल है जो अभी तक पढ़ाई चली रही है सबकी, रिजल्ट सबकी अंत में आउट होगी, और क्या क्या होगा अंत में बाबा मुरलियों में संकेत भी देते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस तक जीते रहना, बीच में माया खा न जाए संभालना, तो जरूर वो अंत के नजारे सब देखेंगे। तो इसमें दो तीन प्रकार के नजारे होंगे, एक प्रकार के तो वो होंगे जो जो उन्हेंने देंगे, हमें बताया क्यों नहीं वो भी क्यों लगेगी, दूसरे वो होंगे जो पश्चाताप करेंगे कि हमको पता तो था लेकिन हमने किया नहीं, और तीसरे कौन होंगे जो विजयी होंगे। तो हमको कौन सी लाइन में खड़ा होना है, विजयी की लाइन में। तो विजयी की लाइन के लिए बाबा कहते ये नहीं सोचो लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि जो कमजोरी रही होगी ना वही अंत में विघ्न बनेगी, वही विघ्न आए के रूप में आएगी और वो एक सेकंड के पेपर में फेल कर देगी, क्योंकि सबका पेपर एक जैसा थोड़ी होगा, वो जो कमजोरी वाला संकल्प जो कमजोरी होगी ना वही पेपर के रूप में आएगी, समझो ना। ऐसा नहीं खाली एक ही पेपर आएगा, केवल मोह का पेपर आएगा या लोभ का पेपर आएगा या और खाली एक ही मोह का थोड़ी आएगा, कई प्रकार का आएगा, कोई भी आ सकता है, एक तो आएगा जरूर, अगर जीव रस होगा तो जीव का ही पेपर आएगा,
मालूम है।
अंत की घड़ी आई, एक बहन थी, उसको जीव का इतना रस था, इतना रस था, बस टेस्टी खाना चाहिए, टेस्टी न मिले तो खाना ही नहीं खाती थी। और जब उसकी अंत की घड़ी आई, कहती मुझे पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए। ये दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती, पानी पूरी चाहिए। अब पानी पूरी कहाँ से आएगी, इतना सहज पूरी होता है बनाना है। तो पानी पूरी याद करते प्राण दे दी। बताओ शिव बाबा की बजाय पानी पूरी। तो ये कमजोरी थी ना। तो अंत में बस बाबा के सेवा और कोई याद ना आए। शांता बहन का आपने अनुभव सुना ना, सुना वो शांता बहन का मदुराई वाली, पता है ना, जो बाबा का संदेश सुना कि नहीं सुना, सुना ना कि नहीं। हाँ, तो वो देखो वो जब वो गिरी है, उसको सिर में तो चोट आई थी, लेकिन उसको बहुत दर्द भी हो रहा था, और उस समय उसको हार्ट का भी हुआ होगा, सब एक साथ हो गया। बस उसने और कुछ याद नहीं, बाबा बाबा बाबा, वो अनकॉन्शियस भी नहीं थी, सब कॉन्शियस जैसे थी, बस बाबा बाबा बाबा। तो वो जैसे वो दर्द सूले से कांटा हो गया, उसको पता ही नहीं चला होगा, और जैसे बाबा ने उसको गोद में बुला लिया। इतना सारो सूले समान मानो उस समय दर्द हो सकता है, लेकिन उसका जैसे सब कांटे की तरह सब खत्म हो गया, और एक सेकंड में बाबा की गोद में चली गई। वो तो बहाना था गिरना, जाना तो होगा ही, पर बहाना बन गया। लेकिन बाबा 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 के सिवा और कुछ नहीं उसके मुख पर था। तो हमारी भी स्थिति कैसी हो है? जी बस, और कुछ याद ना आए। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में लौकिक बच्चों का नाम ऐसा ही रखते हैं। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक बच्चे का नाम नारायण रखा था। वो दिखाते ना वो कौन सा असुर था जिसका नाम बेटे का नाम नारायण था। ना ना ना, हाँ तो उसको मुक्ति मिल गई। कौन था? अजामिल। अजामिल जैसा पापी, पापी था एकदम, लेकिन उसके बेटे का नाम नारायण रखा था। तो वो याद किया बेटे को, पर नारायण नारायण का तो नारायण ने समझा मुझे याद कर रहा है। तो ऐसी कहानियां बना दी। इसलिए बच्चों का नाम भी वही रखते हैं, ताकि अंत में भगवान का नाम लिया जाए। चलो ओम शांति।